के भगवान आते हैं स्क्रीन पर, तो उनकी पूजाएं वो करते हैं, तो समय के साथ साथ धर्म का अभाव हो ही रहा है, वो कोई भी स्वीकार करेगा। ततश्चनुजनम धर्मम सत्यम। वैदिक सभ्यता में एक समय ऐसा था, प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं, कि एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को एक जमीन का टुकड़ा बेचा, और जिसने खरीदा उसने जब खेती की तो अंदर से सोने का एक मटका मिला, तो भागा भागा दूसरे व्यक्ति के पास गया, अरे देखिए मैंने आपसे ये जमीन खरीदी थी, अंदर से मुझे ये सोने का मटका मिला, अंदर पूरे सोने के सिक्के भरे हैं, देखो मैंने तो केवल जमीन खरीदी थी, इसका दाम मैंने नहीं दिया, ये आपकी संपत्ति है, आप रख लो। और जिसने जमीन बेची वो कहता है नहीं नहीं, एक बार मैंने जमीन बेची थी जो बेच दी वो मेरी नहीं है, अंदर जो भी मिले सब आपका है, गुड्स वन सोल विल नॉट बी टेकन बैक। अगर किसी के जमीन में ऐसा मिले तुरंत वो हड़पेगा, लेकिन ये था सत्य का स्टैंडर्ड। लेकिन आज तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो इसलिए कहा जाता है सत्यम शौचम क्षमा दया। कलयुग में तो हाल ऐसा है कि एक गांव में एक साधु आए और गांव वालों को कहा कि कल हम एक बहुत बड़ा पयोव्रत यज्ञ करेंगे, जिसमें सभी अपने घरों से एक एक मटका दूध लेके आना, और बीच में एक बहुत बड़ा मटका रख दिया, बर्तन रख दिया, और सबको कहा एक एक मटकी लाके डालना। अगले दिन साधु गए, देखा तो मटका पानी से भरा हुआ है पूरा, बोले क्या हुआ, जितने लोग आए अपनी छोटी छोटी मटकी में पानी लेके आए, उनको लगा दूसरे तो दूध लेके आएंगे उसके बीच अपना एक गिलास पानी जाएगा तो किसी के पता नहीं लगेगा। तो सत्य का अभाव कलयुग में हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन सत्य ही एक ऐसा पैर है जो अभी भी थोड़ा बहुत टिका हुआ है, नहीं तो बाकी सभी पूरी तरह विध्वंस हो गए हैं। क्षमा दया। दया, दया का अर्थ क्या है, पशुओं के ऊपर दया, दूसरे जितने भी प्राणी हैं उन पर दया, अरे दूसरों को तो छोड़ो कम से कम अपने ऊपर तो दया करो, लोग तो अपने ऊपर भी दया नहीं करते, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, ऐसे मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं जिससे शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां बीमारियां हो जाती हैं। पैकेट में लिखा है कि ये मत लीजिए, इससे आपकी मृत्यु हो सकती है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, फिर भी लोग लेते हैं, अर्थात अपने ऊपर भी दया नहीं करते लोग, तो ये कलयुग का लक्षण है। कालेन बलिना राजन नंशति आयुर बलम स्मृति। आयु, बल और स्मृति ये सब समय के साथ कम होता जा रहा है। हमें बड़ा गर्व है कि आजकल हम सुपर कंप्यूटर तैयार कर लेते हैं, इतने सारे चिप्स हैं जिसमें कितनी मेमोरी है, लेकिन वास्तव में एक जमाना ऐसा था कि जितने भी शास्त्र थे उसका सारा ज्ञान केवल दिमाग में लोग स्टोर कर पाते थे। कलयुग में चाहे कितने भी मशीन बनाओ, कंप्यूटर भी बनाओ, तो वो भी समस्याओं से मुक्त नहीं है, कभी वायरस आ जाता है समस्या, जितना कुछ अंदर रखा सब उड़ गया, क्या करेंगे। इसीलिए कलयुग दोष से भरा हुआ है, चाहे कितना भी दोषों को दूर करने का प्रयास करो दोष मुक्त नहीं हो सकते। और आगे वर्णन आता है, वित्तम एव कलौनाम जन्माचार गुणादय। वित्तम एव कलौनाम जन्म आचार गुणादय। किसी व्यक्ति के पास धन है तो उस व्यक्ति को बहुत ही सभ्य, सुशील, शिष्टाचारी, महान माना जाता है, चाहे उसके अंदर अच्छे गुण हो न हो, बैंक बैलेंस अच्छा है तो बस ये महान है। वित्तम एव कलौनाम, जैसे ही व्यक्ति के पास धन आता है, चाहे वो स्मगलिंग से क्यों ना एकत्र किया हो, उसके तुरंत बाद वो अपना बहुत बड़ा नाम कर देता है, कुछ दान पुण्य कर देता है और उसे बड़े बड़े पद प्राप्त हो जाते हैं। जन्म आचार गुणादय, कि जन्म का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन एक बार धन आता है तो तुरंत लोग कहने लगते हैं आप कितने कुलीन हैं, कितने महान परिवार में जन्म लिया है। तो धन ही एक प्रमाण बन गया है कलयुग में। तो ये बात कितनी सच है, वित्तम एव कलौ नृणाम जन्म आचार गुणादय। तो कहा जाता है कि एक बार एक जमींदार को उनके आसपास के जितने भी सदस्य थे वो कहने लगे कि आप बहुत बड़े पंडित हैं, उनके पास बहुत धन था जमींदार के पास। तो मित्र कहने लगे आप तो कितने धनवान हैं, कितने महान हैं, लेकिन साथ साथ आप पंडित भी हैं, क्योंकि जो धनवान है वो तो पंडित होगा ही। तो उनके मित्रों की बातों को सुनकर उसे वास्तव में लगने लगा कि हाँ वो बहुत बड़े पंडित हैं। और पास के गांव के एक असली पंडित वहां आए, वो संस्कृत के पंडित थे। तो इनके चेलों ने कहा कि चलो अब जमींदार से इनका युद्ध करवाएंगे। तो उन दोनों का युद्ध करवाया, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। तो जो असली संस्कृत के पंडित थे वो बैठे और धनवान जमींदार के सामने बैठकर पूछने लगे कस्त्वम, कस्त्वम संस्कृत में अर्थ होता है आप कौन हो, कहत्वम आप हो कौन। अब लेकिन जमींदार के पास धन तो था लेकिन पंडित तो वो कुछ जानते नहीं, क्योंकि केवल धन के आधार पर ही उनको डिग्रियां वगैरह मिल गई थी। तो भ्रमित हो गए सुनकर, ये क्या है कस्त्वम, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। तो कहने लगे कस्त्वम खस्त्वम ठस्त्वम मस्त्वम लस्त्वम। और उनके जितने भी सारे चेले चपाटे थे सब कहे वाह 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 वाह, क्या बात कही है, क्या काव्य की रचना की है। तो जो असली पंडित थे वो समझ गए तो मूर्ख है, ये तो कुछ नहीं जानता, मैं क्यों समय व्यर्थ गवाऊं, उठकर चले गए। और सारे चेले चिल्लाने लगे अरे देखो आपसे घबरा कर भाग गया वो देख लिया कि आप इतने बड़े पंडित हो, ऐसा उत्तर दिया आपने कि उसकी धज्जियां उड़ा दी, जय हो आपकी जय हो। वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणादय। हम देखते हैं व्यक्ति के पास धन संपत्ति आती है, सत्ता आती है, तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी उनको बुलाते हैं, कहते हैं हम आपको ऑनररी डिग्री देंगे। क्यों भाई ऐसी क्या बात की है, नहीं नहीं डिग्री देंगे, क्यों, कारण ये है वित्तम एव कलौ नृणाम जन्माचार गुणादय। और बात कही है धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलम एव ही। किसी को कलयुग में न्याय चाहिए तो उसके पास बल होना चाहिए, या तो धन होना चाहिए या बल होना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। अन्यथा बेचारा गरीब आदमी कलयुग में न्याय की भिक्षा नहीं मांग सकता, क्योंकि कोई भी वकील मुफ्त में काम नहीं करते। तो कहा जाता है धर्म आचार धर्म न्याय व्यवस्थायाम, ये कलयुग की विशेषता है, क्योंकि वैदिक सभ्यता और संस्कृति के अनुसार कोई गरीब व्यक्ति भी जाकर राजा के समक्ष इस तरह अर्ज कर सकता था। तो कहा जाता है कि कलयुग में हम देखते हैं आंखों के समक्ष इतने बड़े बड़े नामी गुंडे जिन्होंने कितनी हत्याएं की हैं, लेकिन उनका वकील बड़ा उचित है, बहुत शक्तिशाली है, और वो न्याय के अलग अलग बातों को इस तरह जानता है कि किसी न किसी प्रकार से वो छुड़ा लेता है। तो हम देखते हैं कलयुग में कि इस तरह के न्याय के पेचीदार मामलों में फंस कर जो वास्तव में मुजरिम नहीं है वो फंस जाते हैं, और जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया वो वास्तव में फंसते हैं, जिन्होंने गुनाह किया वो फंसते नहीं, वो घूमते रहते हैं। तो धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलम एव ही। तो एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच में, स्वर्ग लोक और नरक लोक के बीच में एक मतभेद हुआ। स्वर्ग लोक और नरक लोक के निवासी वाद विवाद कर रहे थे और कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तभी सभी घबरा कर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, इसके विषय में दोनों दिशाओं से आप अपने अपने मत प्रस्तुत करो और एक हम जज बिठाएंगे और उसके बाद इसका निर्णय होगा। तो स्वर्गवासी सब घबरा गए, बोले क्यों? क्योंकि सारे वकील नरक में थे, क्योंकि कलयुग में कई वकील ऐसा कार्य करते हैं कि केवल उन लोगों को बचाते हैं जो जिन्होंने जुल्म किए हैं लेकिन उनके पास पैसे हैं। तो वैसे हम किसी वकील के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन श्रीमद् अरे आज महाप्रभु जी भी आए हैं, महाप्रभु जी तो दिव्य हैं, वो तो भगवान के भक्त हैं, इस्कॉन की ओर से वकील हैं वो, मैं क्षमा चाहता हूँ वकील अपराध करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा गया है कारणम बलम एव ही। और आगे वर्णन आता है कि दस्युत्कृष्ट जनपद वेदा पाषण रूषिता राजानश्च प्रजा भक्षा शिष्णोदर पराद्विजा, कि जो नेता होंगे राजा होंगे वो अपनी प्रजा का भक्षण करेंगे, अपनी प्रजा को काट काट कर चबा कर खा जाएंगे, उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, या तो अलग अलग नियम बनाकर, जो नियम हर सरकार के साथ बदलते रहते हैं, या फिर वो अपनी प्रजा को धर्म की दिशा से पथभ्रष्ट कर देंगे। और ये सरकार इस प्रकार के हर देश में पाई जाएगी, पूरे विश्व भर में कलयुग में। दस्युत्कृष्टा जनपदा वेदा पाषण्य दूषिता, और वेदों के विषय में कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं देगा, सब भ्रमित हो जाएंगे कि असली वेद हैं क्या, इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे किताबें हैं, वेद वास्तव में कहना क्या चाहती हैं, लोग समझ नहीं पाएंगे। और राजानिष्ट प्रजा भक्षा शिष्णोदर प्रजा द्विजा, जो ब्राह्मण होंगे वो नाम भर के लिए केवल अपना जनेऊ धारण करेंगे और उनके जीवन का असली लक्ष्य होगा शिष्णोदर, पेट को भरना। ये कलयुग के ब्राह्मणों का लक्षण होगा। और कहा भी जाता है वामन पुराण में कि राक्षसिम कलिम आश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिसु, कलयुग में जितने पहले जमाने के राक्षस थे जिनको भगवान ने मारा, कई बार ऐसे राक्षस जिनको भगवान ने स्वयं नहीं मारा, ये राक्षस कलयुग में ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेते हैं। तो कलयुग में कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म ले और ये ज्ञान उसे पता हो तो कभी बोलेगा नहीं मैं ब्राह्मण हूं, दो बार सोचेगा बोलो कि नहीं। राक्षसिम कलिम आश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिसु, तो इस प्रकार कलयुग में ब्राह्मणों का भी लक्षण बताया गया है। और वैसे बहुत सी बातें बताई गई हैं। अवृत बटवो शौच भिक्षवश्च कुटुंबिन तपस्विनो ग्रामवास न्यासिनो अर्थ लोलुपा, जो ब्रह्मचारी होंगे बहुत ही अनक्लीन, शौच के बारे में कुछ नहीं जानेंगे, और जो गृहस्थ होंगे वो भिक्षुक बन जाएंगे, और जो वानप्रस्थ होंगे वो शहरों में रहेंगे, और जो सन्यासी हैं वो धन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि इन सभी आश्रमों के विषय में ज्ञान नहीं दिया जाएगा। ऐसा होता है कि ब्रह्मचारी का अर्थ स्टूडेंट, जो पढ़ाई कर रहा है वो ब्रह्मचारी, तो कहा जाता है अव्रत बटवो शौच, अर्थात जो कलयुग में स्टूडेंट है वो बहुत ही गंदे रहेंगे। और यदि आप किसी भी कॉलेज के हॉस्टल में जाके देखोगे, हॉस्टल के कमरे सबसे गंदे होते हैं, क्योंकि ये लक्षण ही है कलयुग का कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है उसके साथ साथ इन सभी बातों का शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, और साथ साथ कई बार गृहस्थों को प्रचार करने जाओ, कोई विवाहित व्यक्ति है प्रचार करने जाओ, बोलो जन्माष्टमी है कुछ चंदा तो भगवान के लिए कुछ करो, बोलता अरे आपका क्या है, आपका तो कुछ घर नहीं परिवार नहीं, वास्तव में आपको हमें देना चाहिए क्योंकि हमारे पास घर परिवार संभालना है। कलयुग में इस तरह का उत्तर भी प्राप्त होता है, उसी का वर्णन किया है यहाँ पर। और वन तो रहे नहीं तो कहाँ रहेंगे वानप्रस्थ। तो इसीलिए इस्कॉन के मंदिरों में रह सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन के मंदिर शहर भी नहीं वन भी नहीं, वो तो साक्षात गोलोक वृंदावन धाम है। तो इसीलिए कोई मंदिर में रहे तो वास्तव में गोलोक वृंदावन धाम में ही निवास कर रहा है। और जहां तक सन्यासी का प्रश्न उठता है, कई लोग सन्यास वस्त्र इसलिए धारण कर लेंगे क्योंकि उनको लगता है कि इससे हम काफी धन कमा पाएंगे। तो इस तरह की बातें मन में होती हैं, और बहुत सी बातें बताई हैं जिसका अनुभव हम रोज ही कर रहे हैं। कहा गया है कलयुग में लोगों के मन सदैव अशांत रहेंगे, हे राजा वे अकाल तथा कर भार से दुर्बल हो जाएंगे और सूखे के भय से सदैव विचलित रहेंगे, उन्हें पर्याप्त वस्त्र भोजन तथा पेय का अभाव रहेगा, वे ना तो ठीक से विश्राम कर सकेंगे। आधी तो बिल्डिंगें रेलवे ट्रैक के बगल में है, दिन रात ट्रेन ठक 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 करता रहता है, पॉम 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 पॉम, और इतनी आवाजें आती हैं कि जिस व्यक्ति को वहां रहने की आदत है वो शांति स्थान में जाकर नहीं रह सकता। जब तक ट्रेन की वो आवाज नहीं आती उसे नींद नहीं आती। मैंने स्पष्ट अपने आंखों से देखा एक व्यक्ति को, ऐसे रात भर करवटे बदल रहा है। क्या हुआ भाई? अरे मेरा घर रेलवे ट्रैक के बगल में था तो कई बार लोग अपने साथ उसका रिकॉर्डिंग लेके घूमते हैं और इसे लगाकर सुनते हैं, तो ठीक से विश्राम नहीं कर पाते, न संभोग न स्नान कर सकेंगे, स्नान भी ठीक प्रकार से कर नहीं पाते। स्नान का कभी कभी मूड आता है लोगों को, और जब करने जाते हैं देखते हैं पानी नहीं आ रहा, तब क्या करें? तो सुबह से चिंता लगी रहती है पानी कब भरेंगे, भरने के बाद पहले पिएंगे उसके बाद बचा तो स्नान करेंगे। तो कलयुग में ये लक्षण देखे जाते हैं, उनके पास अपने शरीरों को सुसज्जित करने के लिए आभूषण नहीं होंगे। सोले आने सच, आभूषण कहाँ बचे? आजकल तो इमिटेशन का जमाना है, कोई भी असली माल नहीं बेचता, और यदि असली माल हाथ में हो भी तो पहनने से घबराता है, क्योंकि इतने सारे लोग घूम रहे हैं जो उसे पकड़कर खींच लेंगे। तो किसी के घर में सोने का चेन होता भी है तो 10 बार सोचता है कि मुंबई शहर में घूमते समय सोने का चेन पहनकर घूमूं कि नहीं, क्योंकि आजकल के चोर भी इतने हवसी हैं कि कोई भी वस्तु चाहिए तो शरीर का वो अंग ही काट लेते हैं। हाथ में सोने की घड़ी हो तो हाथ काट लेते हैं, गले में सोने का चेन हो तो पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए घबरा जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सुसज्जित नहीं कर पाते आभूषणों से। पहली बात तो सोना तो मिलता ही नहीं, चांदी मिलती नहीं, हीरे मोती मिलते ही नहीं, बहुत ही कम कम लोगों के पास उपलब्ध होते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का जमाना चल रहा है, इमिटेशन का जमाना चल रहा है, और लोगों को लगता है हम प्रगति कर रहे हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता और संस्कृति में प्रत्येक स्त्री पुरुष बच्चे हमेशा अपने शरीर पर सोने हीरे ये सभी से सुशोभित रहते थे और बहुत सुंदर लगते थे। वस्तुतः कलयुग के लोग धीरे धीरे पिशाच दिखने लगेंगे, ऐसा वर्णन किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत में कहा है, इसीलिए मैं भागवत खोल कर पढ़ रहा हूँ, कहीं लोग मुझे गालियां देने लगे, ये क्या गालियां दे रहे हो हमें। वस्तुतः कलयुग के लोग धीरे धीरे पिशाच दिखने लगेंगे, कलयुग में लोग कुछ ही सिक्कों के लिए शत्रुता ठान लेंगे, वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर स्वयं मरने तथा अपने ही संबंधियों को मार डालने पर उतारू हो जाएंगे। कलौ काकिनक्येऽप्यर्थे विग्रह्य त्यक्त सौहृदा, त्यक्त सौहृदा। 20, 25, 30, 40 साल का संबंध हो लेकिन 25 पैसे 8 आने 1 रुपए के ऊपर युद्ध होता है और 30-40 साल का संबंध टूट जाता है। कितनी बार हमने देखा है कि धन के नाम पर कई परिवार उजड़ गए हैं, युद्ध हो गया है। तो इस तरह कलयुग का यह लक्षण आता है, और इसमें बहुत सी बातें बताई गई हैं, लेकिन इसके विषय में अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो हम देख ही रहे हैं अपने रोज के जीवन में। तो अंततः चर्चा को समाप्त करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इन दोषों के लिस्ट को सुनकर कोई व्यक्ति घबरा जाएगा, पसीने छूट जाएंगे, लेकिन चिंता मत करो। कलेर दोष निधे राजन, दोषों का सागर है, लेकिन अस्ति ही एको महान गुण, एक ऐसा गुण उपलब्ध है कलयुग में जो किसी युग में उपलब्ध नहीं, कीर्तना एव कृष्णस्य। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके मुक्त संग परम ब्रजेत कलयुग के इन सभी दोषों को बड़े आसानी से लांग सकता है। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को कहते हैं कि अब मैंने यह संपूर्ण वर्णन समाप्त किया, अभी आप बताओ आप और क्या सुनना चाहते हो। तब परीक्षित महाराज ने कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी महाराज, मेरे प्रिय गुरु महाराज, आपकी विशेष कृपा से मृत्यु के निकट मुझे ऐसा महान ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब मैं समझ गया हूँ कि कृष्ण भगवान एक व्यक्ति हैं और मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत हो रहा है। मैं आपका आभार किस तरह चुका सकता हूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के निकट गए और उनके समक्ष जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, हे मुनिवर, कृपा करके हमें अनुमति दीजिए कि अब जबकि मृत्यु का क्षण निकट आ चुका है, जैसा आपने आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझकर, अपने को शरीर से भिन्न मानकर, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पूर्ण रूप से चित्त को एकाग्र कर सकूं, और जब वो तक्षक नाम का सर्प आए और वो सर्प आकर मुझे काटे डसे तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो केवल मेरे इस देह को ही स्पर्श कर सकता है, मेरी आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकता। आत्मा तो अमर है, इसीलिए मुझे इस तक्षक से कोई चिंता नहीं, मैं तक्षक से घबरा नहीं रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, बस मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष बनाए रखिए जिससे मैं भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु के समय स्मरण कर सकूं। उस समय उन्होंने दंडवत किया सुखदेव गोस्वामी महाराज को। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने अंततः संपूर्ण श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाने के पश्चात बाकी जितने भी वहां अतिथि थे, ऋषिगण थे, उन सबको प्रणाम करके जिस तरह अकस्मात वहां उपस्थित हुए थे उसी तरह अकस्मात उस स्थान से वो दूर चले गए भगवान श्री कृष्ण के विषय में चिंतन करते हुए। फिर परीक्षित महाराज पूर्वी दिशा की ओर देखते हुए वहां बैठ गए और मन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर एकाग्र किया। और तभी तक्षक नाम का सर्प एक ब्राह्मण का वेश धारण कर परीक्षित महाराज के निकट आने लगा। जब तक्षक परीक्षित महाराज के निकट आ रहा था वहां कश्यप मुनि आए। कश्यप मुनि के हाथ में ऐसी शक्ति थी जिससे वो तक्षक के विष को उतार सकते थे। तक्षक ने देखा कि अब ये ब्राह्मण कश्यप मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेरने वाला है। तब तक्षक ने कुछ अमृत दिया और कुछ भेंटें देकर कश्यप मुनि को भ्रमित कर दिया। कश्यप मुनि ने कहा, ठीक है, यदि आप मुझे भेंट देते हो तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तक्षक गए ब्राह्मण का वेश धारण कर और समस्त ऋषियों के सामने तक्षक ने परीक्षित महाराज के पैर को डस लिया और उसी समय परीक्षित महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को ध्यान करते हुए सीधे भगवत धाम गोलोक वृंदावन धाम पहुंच गए, जहां उन्हें भगवान श्री कृष्ण की नित्य संग प्राप्त हुई। बोले परीक्षित महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। उस समय जितने भी देवतागण थे सब उपस्थित हुए और शंख बिगुल नगाड़े बजाने लगे, मृदंग ढोल पीटने लगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही विरले जीव ने गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश प्राप्त किया था, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस तरह परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी महाराज के आदेशों को पूर्ण रूप से हृदय में रखते हुए अंततः कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त की, गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश पाया। उसके पश्चात परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मजय ने देखा कि मेरे पिता की ऐसी निर्मम हत्या किसने की? तक्षक सर्प ने की। अच्छा, तो उन्होंने निश्चय किया अब मैं एक सर्प यज्ञ का आयोजन करूंगा, जिसमें जितने भी सर्प हैं 14 लोकों में सबों का विध्वंस कर दूंगा। ऐसा कहके यज्ञ की तैयारी की और यज्ञ में ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े और सारे सर्प जहां भी थे आकर गिरने लगे अग्नि में। तक्षक तुरंत भागा भागा इंद्रदेव के पास गया, कहने लगा इंद्रदेव जी, इंद्रदेव तो आरंभ से लेकर अंत तक हर जगह हैं, 12वें स्कंद के अंतिम लीला में भी इंद्रदेव हैं। इंद्रदेव के निकट जाकर कहने लगे इंद्रदेव रक्षा कीजिए हमारी, हमें अपनी शरण दीजिए, मुझे उस यज्ञ की अग्नि में फेंका जा रहा है। इंद्रदेव ने कहा ठीक है मेरी शरण ले लो। जन्मजय गौर से देख रहे थे कि यज्ञ की अग्नि में कौन कौन से सर्प आ रहे हैं, देखा कि तक्षक अभी तक नहीं आया तो ब्राह्मणों को पकड़कर पूछने लगे अरे ब्राह्मणों इतने बड़े बड़े मंत्र पढ़ रहे हो लेकिन हमारा असली शत्रु तो दिखता नहीं, कहां गया वो? तो तभी एक ब्राह्मण ने कहा कि राजन उसने इंद्र की शरण ली है। जन्मजय सोचने लगे और कहा इंद्र की शरण ली है तो आप ऐसा मंत्र पढ़ो जिससे इंद्र और तक्षक दोनों इस अग्नि में गिर जाए। तथास्तु सारे ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया। इंद्रदेव विमान में अप्सराओं के साथ भ्रमण कर रहे थे, अचानक विमान के बाहर गिर गए और हवा में उड़ने लगे। इंद्रदेव घबरा गए, क्या चल रहा है, मैं कहां जा रहा हूं, समझ नहीं पाए क्योंकि उस मंत्र की शक्ति से इंद्रदेव को अग्नि में खींचा जा रहा था। तभी वहां पर एक दूसरे ऋषि जा रहे थे, उन्होंने अचानक देखा कि विमान वहां खड़ा है इंद्रदेव का और इंद्रदेव आसमान में पता नहीं यहां गुलाटियां खा रहे हैं, बात क्या है? तो उनको पता लगा कि यहां कोई अग्नि का यज्ञ चल रहा है और वहां इंद्रदेव जा रहे हैं, उनका नाश होने वाला है। तुरंत भागे भागे आए, जन्मजय महाराज को कहने लगे देखिए महाराज इंद्रदेव देवता हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना ठीक नहीं, और वैसे भी मित्रता और शत्रुता ये तो सब भौतिक स्तर पर है। आपके पिता की मृत्यु हुई, वो तो गोलोक वृंदावन धाम चले गए, अभी आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता, आप इस वैर भावना को छोड़िए, त्याग दीजिए। जब इस तरह समझाया तो जन्मजय समझे और उन्होंने कहा तथास्तु ठीक है अभी हम इस यज्ञ को यहीं संपन्न करते हैं। इस तरह उन्होंने उस यज्ञ को वहीं समाप्त किया। तो उसके पश्चात और बहुत सी घटनाओं का वर्णन आता है लेकिन उन सभी घटनाओं के विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम इस संपूर्ण गीता ज्ञान यज्ञ का अंत उन 2-3 श्लोकों के साथ करने जा रहे हैं जहां इस श्रीमद् भागवत के विषय में वर्णन आता है और भगवान के हरिनाम के विषय में वर्णन आता है। तो इतनी सारी चर्चा करने के पश्चात अंतिम अध्याय है 12वें स्कंद का, उसका नाम है श्रीमद् भागवत की महिमा। इसमें बताई गई है कि श्रीमद् भागवत पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा, श्रीमद् भागवत दूसरों को भेंट में दोगे तो क्या लाभ मिलेगा, इससे भी बहुत लाभ मिलते हैं, और बताया है कि कौन सी विधि है, किस तरह श्रीमद् भागवत को भेंट में देना चाहिए। यदि आप स्वयं श्रीमद् भागवत पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना भी चाहते हो तो स्वयं पढ़िए, दूसरों को भी ये दान के रूप में दे सकते हैं, गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, जिससे दूसरों का भी भला हो। और इतनी चर्चा संपन्न करने के पश्चात अंततः सुखदेव सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषिगणों को कहते हैं, भवे भवे यता भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नोयत प्रभो। सब लोग साथ साथ बोलिए, भवे भवे यता भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नोनयत प्रभो। हे ईशो के ईश, हे स्वामी, आप हमें जन्म जन्मांतर तक अपने चरण कमलों की शुद्ध भक्ति का वर दें। इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। श्रीमद् भागवत की संपूर्ण चर्चा समाप्त करने के पश्चात और सबसे अंत में जो श्रीमद् भागवत का सबसे अंतिम श्लोक है, श्रीमद् भागवत कौन सा ग्रंथ है? व्यास देव जी ने 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत इत्यादि सभी ग्रंथों की रचना समाप्त कर दी थी, फिर भी असंतुष्ट थे। उसके पश्चात उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की और तब उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई। अर्थात ये श्लोक जो अब हम पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का अंतिम श्लोक है। जैसे कोई ऑथर होता है किसी किताब का, तो सारी कथा लिखने के बाद जो मूल तत्व है अंत में कंक्लूजन लिख कर ही छोड़ता है। तो उसी प्रकार श्रील व्यास देव जी समस्त वेदों का सार इस एक श्लोक में दे रहे हैं, जिसे समस्त वेदों का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक मानना चाहिए। यदि आपको वेदों का अन्य कोई श्लोक नहीं आता हो, लेकिन बस ये एक श्लोक के विषय में जान गए, तो बस आपका जीवन सफल हुआ। तो इसमें क्या वर्णन आता है, सब लोग मेरे साथ बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् तम नमामि हरिं पराम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् तम नमामि हरिं पराम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् तम नमामि हरिं पराम। मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। सब बोलिए, मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की महिमा शीर्षक 13वें अध्याय का श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनयित सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। यह 12वां स्कंद रविवार दिनांक 18 जुलाई 1982 को गेन्सविले फ्लोरिडा में पूरा हुआ। 12वां स्कंद पूरा हुआ। एक नोट, हम ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को और उनकी कृपा से वृंदावन के षट गोस्वामियों को, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके नित्य संगियों को, श्री श्री राधा कृष्ण को तथा परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत को सादर नमस्कार करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की अहैतु की कृपा से हम श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला श्रीधर स्वामी तथा अन्य महान वैष्णव आचार्यों के चरण कमलों तक पहुंच पाए और उनकी मुक्त टीकाओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके हमने श्रीमद् भागवत को पूर्ण करने का विनीत प्रयास किया है। हम अपने गुरु श्रीला प्रभुपाद के तुच्छ सेवक हैं और उनकी कृपा से श्रीमद् भागवत को प्रस्तुत करके हमें उनकी सेवा करने की अनुमति प्राप्त हो सकी है। श्रीला प्रभुपाद की। तो इस नाम संकीर्तन को फैलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हुए थे और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम देखते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और अन्य संस्थाएं नाम संकीर्तन का प्रचार कर पाए। कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायर यजंत ही सुमेधश। अभी आपके हाथ में एक भजन दिया जाएगा जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति में है, तो आप सभी मन लगाकर गाइए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली तभी हम नाम संकीर्तन कर सकते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तो वो अपने संगियों के साथ आए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, और इन सभी संगियों ने मिलकर इस नाम संकीर्तन का यूं प्रचार किया कि पूरे विश्व को हरिनाम संकीर्तन के वर्षा में आप्लावित कर दिया। इसीलिए आप सभी मिलकर पूर्ण श्रद्धा के साथ ये नाम संकीर्तन कीजिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा याचना कीजिए, सब साथ साथ पूरा मन लगाकर कीर्तन कीजिए। मैं श्रीनिवास प्रभु से निवेदन करूंगा कि वो ये भजन गाएं। हरे कृष्ण। गौरांग महाप्रभु की
जय। आ प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मारे, तुम बिना के दयालो जगत संसार, पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित पावन हेतु तव अवतार, पतित पावन हेतु तव अवतार मौसम पतित प्रभो न पाइबे आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कदमी बड़ो दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसा दया करो सीतापति अद्वैत गोसा तव कृपा बोल पाए चैतन्य निता तव कृपा बोल पाए चैतन्य निता स्वरूप सनातन रूप रघुना आहा स्वरूप सनातन रूप रघुना बटयुग सिजी बहा प्रभु लोकना बटयुग सिजी बहा प्रभु लोकना दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु सिनीला रामचंद्र संग मागे नरोत्तम रामचंद्र संग मागे नरोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालो जगत संसारे तुम बिना के दयालो जगत संसारे हर एक